الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ومن آياته، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے، یعنی تمہارے جوڑے تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام سے ہی حوا پیدا ہوئی، ان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے دیا. ایسا نہیں کہ انسان ہے تو اس کا جوڑا ایک بندر، آدمی ہے تو اس کے جوڑا بندری ہے. اب وہ پھر اس سے آگے ہو سکتا ہے وہ لا تو پیدا ہو جائے، لیکن اس کی تربیت، اس کی پرورش اور وہ کیسے ہوگا، اور انسان اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے، اس کے ساتھ کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس کے ساتھ کیسے پوری زندگی گزارے. تو دیکھو، تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے بنا کے، صرف یہ نہیں ہے کہ جوڑے اس لیے ہیں کہ آگے نسل چلانی ہے، جوڑے اس لیے لتسکنوا الیہا. آدم علیہ السلام اکیلے تھے بالکل، اور جب وہ ان کو اکیلا پن محسوس ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ان کا جوڑا پیدا کیا، بی بی حوا کی صورت میں، تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرح. اس کا مطلب ہے یہ رشتہ جو پہلی چیز اس کے اندر ہے وہ ہے سکون. یہ رشتہ سکون والا ہونا چاہیے. یہ آیت جو ہے آپ اکثر شادی کے کارڈز پہ لکھی بھی دیکھیں گے، لیکن مطلب کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس طرح سے اس رشتے کو لیا جاتا ہے کہ یہ تو سکون پانے والا رشتہ ہے. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، دو بالکل مختلف گھروں کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ ماحول میں، اس کے بعد وہ جب نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو دیکھیں کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بندھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا نفع نقصان اپنا ہو جاتا ہے، ان کا ایک دوسرے کی خوشی غمی اس کی اپنی ہو جاتی ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارنے لگتے ہیں، بالکل دو مختلف لوگ. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ بانڈنگ رکھ دیتا ہے، ایک دوسرے سے سکون پانے لگتے ہیں. وہ جو 20-25 سال ایک گھر کے اندر رہے، آپ بالکل ڈفرینٹ انسان کے ساتھ دن اور رات گزارنے لگتے ہیں، اور یہ جو رشتہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جو کہ پہلے رشتے تھے، ان سے زیادہ یہ مضبوط ہو جاتا ہے. اتنا انسان نے اپنے والدین کے گھر ٹائم نہیں گزارا ہوتا جتنا شوہر بیوی کا آپس میں وقت گزرتا ہے. تو پہلی اس کی ڈیفینیشن کیا بتائی، یا اس رشتے کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا، کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اس رشتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کو بھر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون نہیں پاتے تو اس رشتے کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہی فوت ہو جاتا. پہلا مقصد ہی ہے سکون. ٹھیک ہے کبھی کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو بری باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہونا چاہیے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہونا چاہیے، کہ ایک دوسرے سے سکون پانا. جہاں پر یہ نہیں ہے وہاں پہ اس رشتے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کہ وہاں پہ یہ رشتہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان مودت اور رحمت. مودت جو ہے وہ محبت سے بھی زیادہ اوپر کا درجہ ہے، جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا. محبت میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ محبت مطلب کی بھی ہو جاتی ہے، مطلب نکل گیا تو ختم. محبت میں بعض دفعہ صرف اپنی جو اپنی خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے. असल में तो अपनी ख्वाहिश से मोहब्बत है ना, वो तो दूसरे से नहीं है। तो जब इंसान ऐसी मोहब्बत करता है तो जब ख्वाहिश पूरी हो गई मोहब्बत भी खत्म। लेकिन मवद्दत रखती जिसमें दूसरे की खैर ख्वाही है। और आप देखते हैं कि इंसान कैसे, जैसे मैंने कहा, नफा और नुकसान दूसरे के साथ वाबस्ता हो जाता है। उसका नफा मेरा नफा, उसका नुकसान मेरा नुकसान, उसकी खुशी मेरी खुशी, उसका गम मेरा गम, ऐसे बन जाता है। ये है खैर ख्वाही, ये है मवद्दत। और तफासीर में ये भी लिखा है कि मवद्दत वो होती है जो शुरू में होती है, जब जवानी होती है, और उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो वाली फीलिंग्स तो जो एक फिजिकल अट्रैक्शन की उस तरह से नहीं होती, लेकिन रहमत आ जाती है, एक दूसरे के साथ रहम, एक दूसरे की केयर, रहमत में केयर है, तो ये आ जाती है। तो ये कैसा अजीब रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया। हालांकि खून का रिश्ता नहीं है, खून के रिश्ते में अपनी नेचुरल कशिश होती है, इसमें अल्लाह ताला डाल देता है। तो ये रिश्ता इस तरह से कुरान ने डिफाइन किया। अब हम भी देखें कि हम इन रिश्तों के अंदर क्या पाते हैं। सिर्फ दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें, हम देने वाले क्या हैं, क्या हम सुकून देने वाले हैं, क्या हम खैर ख्वाही वाली मोहब्बत रखते हैं और रहम रखते हैं, केयर रखते हैं। लेकिन जो जिंदगी शादी से पहले गुजारी होती है लड़के या लड़की ने, वो बड़ी लाहुबाली सी जिंदगी होती है। फिर एकदम इतना बड़ा चेंज आ जाता है, और वो चेंज ये होता है, सबसे पहले तो एक इंसान अपने घर वालों से ही थोड़ा दूर दूर होने लगता है। कमरों में बंद रहना, माँ बाप से इतना ज्यादा लगाव नहीं रहता। असल में ये होता है कि अब अल्लाह ताला उसको तैयार कर रहा होता है कि इसका अपना जोड़ा हो। फिर शादी हो जाती है तो फिर देखें वही इंसान, उसके अंदर ठहराव भी आ जाता है। वो जो पहले चिड़चिड़ा हो रहा था, जो पहले घर वालों के साथ टाइम नहीं गुजारना चाहता था, फिर ठहराव आ गया। फिर आपस में एक दूसरे के साथ जब मुवद्दत होती है तो फिर ही आगे नस्ल भी चलती है। और फिर देखें वही दोनों मिलके एक घराना वजूद में लाते हैं, एक जैसे नया घोंसला बनता है। कभी रूठते हैं, कभी मनाते हैं, मगर आगे बढ़ते जाते हैं। और ये घराना जो 2 से शुरू होता है, फिर 3, फिर 4, फिर आगे बढ़ता चला जाता है, फिर उनके बच्चे। कभी आपने वो पिक्चर्स देखी हैं जिसमें एक दादा दादी या नाना नानी बैठे हों और उनके गिर्द बहुत सारा हजूमा, कोई छोटे कोई बड़े, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बिल्कुल बेबी। ये क्या है सब? ये 2 से एक कहानी शुरू हुई, एक घराना शुरू हुआ, और फैलता फैलता 15 20 25 कितने सारे लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, जो सारे उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे। तो सुभान अल्लाह, देखो कैसे अल्लाह ताला फैला देता है, कैसे 2 से कहानी शुरू होके कितनी सारे अफराद उस घराने से पैदा हुए। तो ये जो स्टार्ट हुआ वो कैसे हुआ? एक माँ और एक बाप से। इन्होंने एक साथ रहने का जो सिलसिला शुरू किया तो उससे फिर आगे ये नस्ल परवान चढ़ी। मगर हम ये तो देखते हैं कि ये एक माँ और ये एक बाप, अगर ये ममता किसने पैदा की इस औरत में, वो नजर नहीं आता। ये मर्द के दिल में ये बाप के जो शफकत वाले जज्बात हैं, ये किसने पैदा किए, वो नजर नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बड़ा ही खूबसूरत बनाया। मर्द और औरत एक दूसरे की तकमील करते हैं, जिस सिर्फ जिस्मानी जरूरियात नहीं, नफ्सियाती भी, जज्बाती भी, एक दूसरे से उनकी कंप्लीशन होती है। इसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास फरमाया है। लिबास दूसरी जगह पे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। ये नहीं कहा गया तुम तो उनका लिबास हो लेकिन वो तुम्हारा लिबास नहीं, या वो तो तुम्हारा लिबास है और तुम्हें लिबास बनने की जरूरत नहीं, तुम क्यों लिबास बनो। नहीं, दोनों को इक्वल का वो दर्जा इसमें दिया है। वो भी लिबास है, तुम भी लिबास हो। और लिबास सतर भी ढांपता है, यानी तन को, आपके जिस्म को भी ढांपता है, गर्मी सर्दी से भी हिफाजत करता है, और बाय से जीनत भी होता है। ये कम से कम ये तीन रोल तो लिबास के सबको पता है, इसीलिए हम लिबास पहनते हैं ना, एक तो हमारा जिस्म ढका रहे, गर्मी सर्दी से हिफाजत रहे, और खूबसूरती के लिए भी पहनते हैं। तो ये रिश्ता भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही राजदारी भी है, जिसमें देखें सतर ढांपना क्या है, ढांपना क्या है, पर्दा रखना, और इसमें हिफाजत भी है, नजरों की हिफाजत है, शर्मगाह की हिफाजत है, और भाई से जीनत भी है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए कितने अच्छे लगते हैं। तो सोचें कोई परिंदा है, उसके पर अगर उसको पर कोई उसका लिबास समझ ले, पर कोई नोच ले, तो उसका कोई हुसन रहता है, कितना गंदा सा लगता है, और वो उड़ भी नहीं सकता, तो लिबास उसकी जरूरत है। और वैसे भी उसको गर्मी सर्दी से भी बचाता है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है जो आपको जीनत देता है। आजकल शादी को एक बोझ समझा जाता है, एक मुसीबत समझा जाता है, ये मुसीबत नहीं, ये तो जीनत है। और फिर औरत मर्द के घर में आ जाती है, उस औरत की भी हिफाजत हो जाती है, और मर्द औरत को घर में लेकर आता है, तो इस मर्द की भी नजरों की और शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। औरत ना मर्द के पास हो, अपने शौहर के घर में हो, तो 1,000 लोग उंगलियां उठाने वाले बन जाते हैं। इसी तरह पर्दापोशी है राजों की, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और ये भी बहुत ही बड़ा इसका एक लिबास का एक मकसद है कि पर्दा रखे, जो लिबास पर्दा ही ना रखे वो तो लिबास ही नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे के राजों की हिफाजत जरूरी है, और शैतान इस रिश्ते में बहुत दराड़ें डालता है। इसी रिश्ते में आप देखें कि जब लड़का या लड़की के वालदैन की तरफ से, या घर वालों की और की तरफ से, या दोस्त अहबाब की वजह से जब बेजा इन्वॉल्वमेंट होने लगती है ना, तो ये रिश्ता खराब होने लगता है। जब बच्चे अपने घर से डिक्टेशन लेने लगते हैं ना, तो ये रिश्ता बिगड़ जाता है। चाहिए कि इन दोनों को टाइम दिया जाए कि वो अपने मामलात को खुद सॉल्व कर ले। फिर आप देखें कि जज्बात का भी तहफ्फुज़ इसमें है, दोनों एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। देखिए मोहब्बत में तो ये भी है, रहमत में तो ये भी है ना, सकून तो तभी आएगा ना जब जज्बात का ख्याल रखेंगे। अगर जज्बात कोई डैमेज कर देंगे, चाहे मर्द गालम गलोच करके करे, चाहे औरत बदजुबानी से करे, तो सकून क्या रह जाए, सकून तो उड़ जाएगा। तो ये एहसास दूसरे को दिलाना कि मैं तुम्हारी केयर करता हूं, या मैं तुम्हारी केयर करती हूं, अपने एक्शन से, अपनी जुबान से, ये इसमें जरूरी है, तब ये सुकून वाला रिश्ता है। और औरत की जिम्मेदारी है कि मर्द के घर वाल घर बार की, उसके बच्चों की, और इन इनके हवाले से वो जिम्मेदार है कि वो मर्द के घर का भी ख्याल करे, उसके बच्चों का ख्याल करें, उसके रिश्तों का भी ख्याल करें। तो दोनों जब ये समझ लें कि ये सुकून का रिश्ता है, तो एक दूसरे के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। देखें इतना करीब रहना और सांप बन के रहना, तो ये रिश्ता तो फिर बिगड़ ही गया, इसमें क्या सुकून रह गया। अगर दोनों ही एक दूसरे की बदख्वाह बन गए, एक दूसरे की बुराइयां ही कर रहे हैं, तो फिर इस रिश्ते में क्या रहेगा। इसी तरह ये रिश्ता तभी बाई से सुकून बन सकता है जब मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, ज़हनी हमांगी, एक ईस्ट की तरफ हो और एक वेस्ट की तरफ हो, तो कैसे रिश्ता निभेगा। तो इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे नहीं है, मर्द की भी उतनी है। मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया है, इसी को लेकर आज बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि हम हुक्मरान बन गए। इसका मतलब हुक्मरान बनना नहीं है, कवाम का मतलब निगरान होना है। निगरान जो बनाया जाता है वो मशवरा भी करता है, दूसरे के हक को भी मानता है। हाँ, घर को चलाने के सिलसिले में वो कवाम है, यानी वो निगरान है, मगर इंसान होने के नाते दोनों बराबर है, शरीयत ने कोई फर्क नहीं रखा मर्द में और औरत में। ऐसे नहीं कहा कि मर्द अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको 20 गुना अजर है, औरत पढ़ेगी तो 10 गुना। मर्द तस्बीह करेगा तो इतने गुना सवाब है, औरत करेगी तो इतने गुना, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही गुनाह के बारे में कि मर्द करे तो उसको तो इतना गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन औरत करेगी तो उसको बड़ा गुनाह मिलेगा, उसकी सजा बड़ी है। नहीं, फर्क कहाँ पर है? इंतजामी जिम्मेदारी में। देखिए, जब हमें ये नहीं पता होता ना, तो फिर ही लोग हमें एक्सप्लॉयट कर लेते हैं और कहते हैं देखो इस्लाम ने तो औरत को कोई हकूक नहीं दिए। आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या हकूक दिए गए हैं, ताकि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और अपने दीन से बदजन ना हो। फर्क यहाँ पे है, जब मैनेज करना है ना घर को, फैमिली को, तब मर्द को कवाम बनाया गया, तब वो है कि वो अल्टीमेट डिसीजन वो लेगा। सिर्फ मर्द को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कवाम बनाने के साथ साथ कि वो खर्च करे घर वालों पे। सूरह निसा में यही है ना, नफका की जिम्मेदारी उसकी है, बच्चों की भी बीवी की भी, सोली मर्द पे। औरत पे ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने रखी नहीं। अगर वो कमाती है तो उसकी तरफ से एक एडेड खिदमत है, एक एहसान है मर्द के लिए, वरना उसके सर पे ये बोझ डाला ही नहीं गया। मर्द डिमांड नहीं कर सकता, औरत को खिलाना पिलाना पहनाना प्रोवाइड करना उसकी सारी जरूरियात को, ये मर्द के ऊपर अल्लाह ताला ने डाला है। अब औरत को आज देख लें, वो मर्द वाली भी जिम्मेदारियां उठाए हुए है, कमा भी रही है, और औरत वाली भी, बच्चे भी पैदा कर रही है और उनकी परवरिश कर रही है। और औरत ने समझ लिया और मर्द ने भी समझ लिया कि इसकी जिम्मेदारी है। आज के मर्द कहते हैं तुम भी कितना कमा के ला रही हो, मैं इतने पैसे लाता हूं, तुम कितना पिचिन कर रही हो, मैं बिल पे कर रहा हूं, ग्रोसरी तुमने करनी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं इस्लाम में। अगर वो कर रही है तो वो अपनी खुशी से करे, इसमें हरज नहीं, मगर उसके ऊपर पूछ नहीं है, इसकी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कोई कह सकता कि तुम्हें जॉब ही करनी है। उसकी जिम्मेदारी घर की है और बच्चों की, दैट्स इट, जो अल्लाह ताला ने उस पर डाल दी। घर को रखे, घर को संवारे, सवार रखे, अपने शौहर का ख्याल करे, अपने बच्चों का, बस दैट्स इट। पैसे कमाना ये अल्लाह ताला ने उस पे नहीं रखा। लेकिन हमने जब निजाम को उलट दिया ना, फिर उसके बाद हम रोते फिरते हैं आज कि औरतें जो हैं वो आदमियों की सुनती नहीं है, औरतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रही, औरतें जो हैं वो ये नहीं करती, औरत घर नहीं बना रही, आज को बर्दाश्त खत्म हो गई है। देखें, जब आप फितरत कोई बदल देते हैं ना, जो जिसका काम है उसको ऊपर, आप वैसे कहते हैं औरत सिन्फे नाजुक है, सिन्फे नाजुक कहा जाता है ना, सिन्फे नाजुक को आपने डबल काम दे दिया, मर्द का भी दे दिया औरत का भी, और मर्द को तो बच्चे नहीं पैदा करने, वो सिर्फ मर्दों वाला काम कर रहा है। आज अगर कोई मर्द हाथ बटा रहा हो किसी औरत का, वो कहते हैं देखो ये कैसा मर्द है, औरत की पैर की जूती बन गया, ये तो ऐसे हो गया, ये देखो उसके साथ काम करवाती है, उसको कहती है कि घर के काम करो मेरे साथ, वो कहेगी। क्योंकि अगर वो औरत भी बाहर काम कर रही है और मर्द भी बाहर काम कर रहा है, तो घर में आके फिर दोनों ही काम करेंगे। अगर वो औरत मर्द वाला काम कर रही है, तो मर्द को भी चाहिए कि फिर वो घर में आके औरत का हाथ बटाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके बगैर भी हाथ बटाते थे, और लेकिन आज के मर्द वो फिर सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा काम तो नहीं, ये तो इसका ही काम है। तो यानी औरत की बर्दाश्त से और उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसके ऊपर आज बोझ डाला गया, तो आप देख लें आज के फिर हाल क्या हो रहा है। जब वो बच्चे भी पैदा करेगी, वो घर को भी देखेगी, वो बाहर भी कमाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? फिर तो वो अपना ये रोल तो नहीं अदा कर सकती जो औरत का असल काम है, कि वो मर्द को कवाम बना के भी रखे, और फिर ये भी कि वो ही घर को बचाने के लिए कोशिश करे और बर्दाश्त भी वही करे, ये फिर नहीं होगा। वो आदमी की बातें भी सुने। जब आप निजाम उलट देंगे ना, फिर उस निजाम के मुताबिक ही रहें। जब आपने कह दिया दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर का कमा के लेकर आए, और घर में भी आके औरत देखे तो वो औरत कहेगी कि अब मुझे इसकी क्या जरूरत है, अब इसकी जरूरत ही नहीं, मैं क्यों इसके जो बातें हैं वो सुनूं, इसके ताने बर्दाश्त करूं, उसके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी ऐसे मर्द की। तो ये हमारे अपने कसूर है, हम आज चाहते हैं कि औरत वो काम भी करे जो मर्द करता है, और औरत औरत बन के भी रहे। जब आपने उसको मर्द ही बना दिया तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पे खराबी पैदा होती है, इसलिए हमें देखना चाहिए कि जब इस्लाम के मुताबिक हम चल रहे हैं ना, तो फिर उसके मुताबिक फिर आप एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्ट आप वो करते हैं कि जो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन काम वो सारे कराने हैं जो मर्द भी कर रहे हैं, जो मर्दों के भी रोल हैं, बाहर सब चीज वो ही करो, लेकिन घर में आके तुम वैसे बन के रहो जैसे इस्लाम कहता है, ऐसे नहीं होता। और मर्दों को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वाशिरूना बिलमारूफ, उनको भले तरीके के साथ रखो, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, घर का माहौल लाइट होना चाहिए, ये नहीं हर वक्त टेंस माहौल। लेकिन जब हमारे अंदर कनात खत्म हो गई ना, और हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए कि अब एक की सैलरी में तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, अब दोनों कमाएंगे तो तब होगा, जब इतना बोझ पड़ गया एक आदमी के ऊपर और औरत भी कमाने में लग गई, तो उसके बाद घर आएंगे तो दोनों चिड़चिड़े होंगे, दोनों थके हुए होंगे, दोनों ही कहेंगे कि मुझे लाके कुछ दो, मेरी सेवा की जाए, तब घर का माहौल कैसे लाइट रह सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे देखिए, भारी जिम्मेदारियां थी, बहुत भारी जिम्मेदारियां थी, फिर भी चाहे हालात कितने ही तंग भी होते थे, लेकिन हर बीवी को अलग अलग हुजरा दिया हुआ था, चाहे वो एक कमरे का था। फिर आप देखिए हजरत सफिया को सवारी पे सवार करा रहे हैं, लोग हैरान हो गए कि ये इस तरह हेल्प कर रहे हैं उनको चढ़ने के लिए, अपना घुटना आगे कर दिए कि इसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ जाए, वो अल्लाह के नबी हैं। तो इस ये हमारे लिए उसवा है, एक घर वालों के साथ कैसा सलूक करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। हम भी ये समझें कि हाँ, घर में जो बेहतरीन है वो ही है सबसे अच्छा, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा डिक्लेयर किया। आज अगर मर्द बाहर काम करते हो, कहते हैं हम इतने बिजी हैं, हम तो टाइम ही नहीं दे सकते, बीवी के साथ बात करने का टाइम नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की इतनी सारी बीवियां थी, फिर भी शाम को हर बीवी के घर चक्कर लगाते थे, उनके पास कुछ देर टाइम गुजारते थे। इसी तरह एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना, दूसरे की तस्हीक ना करना, उसको बुरा भला ना कहना, उसका लोगों के सामने मजाक ना उड़ाना, उसकी दिल आजारी ना करना, ऐसे बात कोई ना कहना कि जिससे कि उसका वो हर्ट फील हो। तो देखिए ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें करेंगे तो सुकून बनेगा ना ये रिश्ता। और अगर इतनी दिल को छलनी वाली कर देने वाली बातें कर देंगे तो सुकून कहाँ रह जाएगा। तो ये सुकून खुद ब खुद नहीं बन जाता कि कोई ऊपर से आसमान से सुकून उतर आएगा, इसको सुकून का रिश्ता बना दिया, यानी इसके अंदर सुकून आप तलाश करते हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट जरूरी है, इसके लिए दूसरे के लिए सेंसिटिव होना जरूरी। हम अपने लिए तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मुझे ऐसे ना कोई कह दे, मुझे ये ना कोई कर दे, अब मुझे वो चीज कह दी जाए तो मुझे बहुत बुरी लगेगी, लेकिन दूसरों को मैं वो चीज कहती रहूं। तो ये चीजें हमें समझनी है कि जब हम इस तरह से चलेंगे तभी घर सेव हो सकते हैं, और जब ऐसे नहीं चलेंगे तो इसीलिए आज आप देखेंगे घर टूट रहे हैं। फिर ऐसे ही घरानों में जो पुरसकून होते हैं उनमें ही परवान चढ़ने वाली औलाद भी आगे सुकून का बायस बनती है, और उनकी भी परवरिश अच्छी हो सकती है, वरना उनकी भी परवरिश वैसी नहीं हो सकेगी जैसे कि हम चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा माहौल नहीं देते जब वो लड़ाई और झगड़े और बेसकूनी घर में, बेचैनी घर में, चीख और पुकार और ऐसा कुछ देखेंगे तो वो बच्चे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं। दे डिजर्व बेटर। एक अरब अदीबा थी, उम्मे हकीम, उसने अपनी बेटी की जब शादी की तो उसको जो नसीहतें की वो भी आपके सामने रखते हैं कि कितनी प्यारी नसीहतें की। कहने लगी है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाके कनात वाली जिंदगी गुजारना, जो दाल रोटी मिले उस पे राजी रहना, जो रूखी सूखी शौहर खुशी के साथ दे दे वो उस मुर मुसल्लम से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दी है। वो कनात बहुत जरूरी है, ये कंटेंटमेंट, ये नहीं कि मैं बस मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मुझे तो अब ये कपड़े बनाने हैं, मुझे तो ऐसे रखना है, मुझे तो फलान चीज चाहिए, मुझे ईट आउट के लिए लेके जाएं, आउटिंग नहीं कराते मुझे। हो सकता है उसके माली हालात इतने ना, और जब शादी होती है शुरू शुरू में आदमी के ऊपर बड़ा बोझ होता है, अभी करियर शुरू किया होता उसने, वो एक 50 साल का आदमी नहीं है जो जिसके साथ लड़की कंपेयर करती है अपने हस्बैंड को, उस अपने बाप से कंपेयर करती है। बाप ने एक जिंदगी गुजार ली हुई, उसने जमा कर लिया है, अभी ये जिंदगी स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है उसके पास घर भी ना हो, हो सकता है उसके पास अपनी गाड़ी ना हो सकता है उसके पास माली हालात वो नहीं हो, तो जब वो एक नई नई जॉब शुरू की, नई नई शादी हुई है, ऐसे में लड़की के लिए बहुत जरूरी है और उसको आना चाहिए कि किस तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, किस तरह मैंने इसी के अंदर जिंदगी गुजारनी है जितनी इसकी तनख्वाह है। यानी कि मैके वाले आए तो इतना कुछ बेतहाशा आगे रख लिया और फिर उसके बाद सारा महीना देख रहे हैं कि अब क्या करें। कनाल, अभी शादी हुई है, अब उसके बाद मुझे और दिल कर रहा है कपड़े बनाने को, अब नया फैशन आ गया। फिर दूसरी नसीहत उसने की, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना, अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना और हर हाल में उसकी बात पर अमल करने की कोशिश करना, इस तरह तुम उसके दिल में जगह बना लोगे। तो असल बात यह है कि समा इताअत, जोहर घर में आए तो उसकी बात को सुना जाए, ना कि अपनी बात को आगे, कि मेरे साथ तो ये हो गया, मैंने तो ऐसे कर दिया, अगर ससुराल में रहते हैं तो उसने मेरे साथ ये किया। वो थका टूटा घर पर आया है, सारा दिन का वो पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरा है, जॉब्स के ऊपर बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है, अब वो घर आया है कि बजाय कि वो उसको सुकून दिया जाए, घर आते ही अपना रोना रोना शुरू कर दिया, कभी बच्चों का, इसने ऐसे कर दिया, उसने ये मेरी बात नहीं मानी, उसने पढ़ाई नहीं की, जब ये करेंगे तो वो कहेगा मैं बाहर ही रहूं तो बेहतर है। तो पहले उसको रिलैक्स होने दिया जाए, उसको सुकून दिया जाए, फिर उसके बाद बेशक बातें करें, लेकिन आते ही घर आते ही उसके ऊपर नहीं ये शुरू कर दें कि ये चीज़ें, बल्कि उसकी बात को सुने और अहमियत दें। फिर तीसरी नसीहत है मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत और जमाल का ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पे खुश हो कि मैंने वाकई बड़ी अच्छी लड़की से शादी की है। ये अक्सर शादी के शुरू में तो होता है कि अपनी जीनत और जमाल का ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद तो ये सोच लेते हैं कि अब तो बच्चे हो गए, आप क्या ना, अपने जिस्म का ख्याल रखा गया, मोटापा पे मोटापा चढ़ा चला जा रहा है, ना अपनी एक्सरसाइज का ख्याल, ना अपने जिस्म को स्मार्ट रखने का ख्याल, होता फिर ये है कि शौहर को फिर और कोई पसंद आने लगती है, ना अपनी कोई सजावट का ख्याल कि अब वो घर आए तो उसको एक ऐसी बीवी मिले कि जो जिसमें से प्याज लहसुन की स्मेल ना आ रही हो, सोचते हैं कि अच्छा खाना बना लिया ना बस ठीक है, अब इसको खाना एंजॉय करना चाहिए। नहीं, चाहे आपने खाना कितना भी अच्छा बनाया होगा, अगर आप के अंदर से ये लहसुन अदरक की स्मेल आ रही होगी तो कभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो आगे कहती है, जितनी भी मुकद्दर में हो खुशबू का इहतमाम जरूर करना, याद रखना कि तेरे जिस्म या लिबास की कोई बू या हालत उसको नफरत या कराहत ना दिलाए। बाज दफा हम बाहर से तो सच समझ जाते हैं, अंदर हमारे क्या हालात हैं वो नहीं पता अपने, यानी इससे अंदाजा कीजिए कि जब सहाबा आते थे कहीं जंगों वगैरह से भी, तो औरतों को इतना टाइम दिया जाता था, उनको इतला दे दी जाती थी, बाहर ठहरा जाता था कि एकदम उनके सर पे जाके ना खड़े हो जाना, कि वो अपनी सफाई सुथराई कर लें, जीनत कर लें, अपने फालतू बाल वगैरह साफ कर लें, इतना टाइम दिया जाता था। और हमें तो पता है कि शौहर ने शाम को घर आना है, उसके बावजूद हम अपने आप को ऐसा अगर रखें, या बाहर से तो सजा संवार के अंदर के हालात बिगड़े में हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब तो फिर जब ये बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो हालात ये हो जाते हैं ख्वातीन के, अगर तैयार हो जाए तो शौहर ही पूछता है बेगम कहीं जा रही हो, इसलिए कि वो दिन तो बेचारे के कब के गुजर गए कि जब उसने कभी बीवी को अपने लिए तैयार होते हुए देखा होगा, तो शुरू शादी में ही होता था, अब तो कभी उसके लिए तैयार नहीं होती, लोगों के लिए होती है बस। तो ये सोचना चाहिए कि ये मर्द का हक है, अगर उसका कोई रोमांटिक मूड हो भी तो आगे से तो उसके उसके जज्बात ही खत्म हो जाएंगे जब वो देखेगा कि ये तो किस हालत के अंदर। बाज़ औरतें बाहर जाने के लिए लेंजेस लगाती हैं नजर के, और घर में मोटे चश्मे लगा के बैठी रहती हैं, क्यों तो कोई बात नहीं शौहर ही आ रहा है ना। बाज़ों ने तो सारा दिन नाइट सूट ही चेंज नहीं करना होता, उसी नाइट सूट में घूमती रहती, सुबह उसी में छोड़ के गया उसी में शाम को, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त पार्लरों में बैठी रहें, लेकिन अपने शौहर के लिए जितनी हद तक सादगी में भी, जितनी हद तक सफाई सुथराई खुशबू का इतमाम हो सकता है करें। फिर अगली नसीहत वो करती हैं कि उनके घर और माल की निगरानी करना, और उनके बगैर इजाजत के कोई घर में ना आए, यानी उनका माल जो है ना लघवियात में नुमाइश में ऐसे ही फैशन में बर्बाद नहीं करना, क्योंकि माल की जो हिफाजत है वो भी औरत की जिम्मेदारी है। आदमी जो होता है ना वो अपने माल के मामले में बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से कमाया होता है, औरत उसको लुटाना शुरू कर दे ना तो उसको कभी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें भी एतदाल का रवैया रहे, लुटाए नहीं उस माल को बल्कि उसको भी समझे कि हमने इस उसने तदबीर के साथ बजटिंग करके इसको स्पेंड करना। तो कनात का हमने पहले पढ़ा, कनात भी हो एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं करते जाएं, पता है कि इतना हमारा इसकी सैलरी है इतने में ही मुझे खर्चा करना है, तो फिर इंसान बेजा मुतालबात करे ही ना, आपने मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया वो नहीं, पता है कि उसका बजट नहीं है इतना, वो नहीं इतना स्पेंड कर सकता। ये कहती है मेरी प्यारी बेटी, शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से जीनत देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को जचा देती हैं देखने वाले की नजर में। गुसल और वुजू का अहतमाम करना ये सबसे बेहतरीन खुशबू है और नजाफत का जरिया। लेकिन जब गुसल और वुजू करती रही रोजाना, अगर कोई औरत गुसल करे वैसे ही उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी, वुजू का अहतमाम करती रहेगी तो वैसे ही हाथ पैर खूबसूरत रहेंगे। फिर कहती है उनका खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख शोले की मानिंद हो जाती है। और वाकई जब आदमी को भूख लगी हो तो फिर आप ने खाना ना तैयार किया, आप सारा दिन घूमने फिरते रहे, और या आप कहीं लंच पार्टी पे चले गए और फिर वापस आए और घर में तो कुछ खाने को बना ही नहीं हुआ था, और जब आए तो मैं खुद भी इतनी थकी हूँ, अब वो आया तो अब आप बाहर से ही ले आए क्योंकि मेरे से तो नहीं अब पकाया जाता, तो फिर उसको गुस्सा ही चढ़ेगा। या उस वक्त पकाने खड़ी हो गई जब उसके आने का टाइम, तो फिर तो गुस्से को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात को सुकून का बायस बनाना, यानी जो नींद भी आदमी की पूरी ना हो तो उसमें चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो ये दो चीजें जो गुस्सा दिलाती हैं, भूख और नींद, ये अगर पूरी ना हुई तो। लिहाजा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और फिर उस वक्त ये कहना कि इस तरह क्यों बोल रहे हैं और ऐसे क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं और गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा नहीं है। जब हमें पता है कि मरने इतने बजे आना है तो उससे पहले खाने का इंतजाम होना चाहिए, जब पता है कि उसको आराम करना है तो कभी बच्चों को इधर उधर करके उनको किसी और चीज में बिजी करके उनको आराम करने देना चाहिए। और अक्सर शादी के शुरू में होता है रात तक पार्टीज चलती हैं, दावतें चलती हैं, ना उसको आराम का मौका मिल रहा है, औरत तो उसके बाद भी सो जाए, उसने सुबह जॉब पे जाना है, फिर उसके बाद जो चिड़चिड़ा आदमी होगा ना। फिर कहती हैं ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनके राज को राज रखना, उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी अगर की जाए तो फिर वो जलती पे तेल का काम देगी, जलती पे तेल का काम देगी। और तुम उसका राज राज रखना, इससे तुम उसका एतमाद पाओगी, और अगर राज राज नहीं रखा तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, उसको पता चल जाएगा ये मेरी बातें जाके अपने मैके बताती है और अपनी दोस्तों को बता रही है और फलां को बता रही है, तो तो उसका क्या ट्रस्ट रहेगा? जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी खुशी का इजहार उसके सामने ना करना, यानी वो अगर मसलन ऑफिस से आया, उसको कोई बात वहां पे कोई मसला हो गया, वो इस वक्त परेशान है या कोई किसी बात पे गमगीन है, और हम कह रहे हैं कि आज मुझे तो बड़ी खुशी है क्योंकि मुझे तो ये चीज मिल गई, या फलां जगह पे फलां मिल गया, या कुछ भी और अपनी, तो ये नहीं करना। उसकी गम में गमजदा और उसकी खुशी में खुश रहना सीखना, क्योंकि ये रिश्ता क्या है, केयर का है। केयर नहीं होगी, बाज दफा औरतें बच्चों की केयर करती हैं, वो तो औलाद है, जाहिर है उसकी केयर होती, लेकिन शोहर की कोई केयर नहीं रहती, वो जाता फिरे जहां मर्जी। तो इस रिश्ते को मेहनत के साथ बनाना पड़ता है, इसके ऊपर एफर्ट लगानी पड़ती है, खुद ही नहीं बन जाता। अगर आप किसी जोड़े को देखते हैं ना बुढ़ापे तक के, वो किस तरह अच्छी तरह रह रहे हैं, तो उन दोनों की एफर्ट उसमें होती है, या कम से कम एक की तो जरूर होती है, वरना ये रिश्ता बन नहीं सकता। ऐसे नहीं है कि सबको एक वंडरफुल लाइफ शुरू से मिल रही थी तो इसलिए आज वो ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, जरूर उन्होंने इसमें मेहनत डाली हुई है, बर्दाश्त डाली है, बहुत कुछ सहा है, तब आज वो इस पॉइंट पे पहुंचती हैं। तो यंगस्टर्स को ये समझना चाहिए, जब वो अपने माँ बाप को भी देखें कि ये तो बड़े हंसी खुशी जिंदगी काटते हैं और मेरा साथ तो ये हो रहा है, नहीं, आपने उनकी जवानी नहीं देखी, उनमें उनको कितने मसाइल हुए, उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ कोप किया। तो ये रिश्ता सुकून का बनाना है, और इसमें मोहब्बत और रहमत रखनी है, देनी है। जो चीज, याद रखिए, अल्लाह ताला का एक कानून है, जो चीज आप देंगे ना वो आपको उससे ज्यादा मिलेगी। आप मसलन पैसा दें, आपको अल्लाह ताला और देगा, आप इल्म बांटे, आपको अल्लाह ताला और अता फरमाए, आप इज्जत चाहते हैं ना अपने लिए, इज्जत देना शुरू करते हैं, आपको इज्जतें मिलना शुरू हो जाएंगी। आप मोहब्बत चाहते हैं ना अपने लिए, लोग मुझे मोहब्बत करें, आप मोहब्बत बांटना शुरू करते हैं, आपको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। आप अपने लिए केयर चाहते हैं ना, आप केयर करनी शुरू कर दें, आपको केयर मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आप देंगे वही आप पाएंगे। आप तो लोगों को जलील करते रहे और आप सोचें कि मुझे तो इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं होगा। कहीं पे भी इसको आजमा के देख लें, बच्चों के साथ देख लें, किसी के साथ भी देख लें, आप जो देंगे वही पाएंगे। इन्ना फी दालिकल आयात लिकौमी यतफक्करून, इसमें गौर व फिक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानी है, तो गौर करें। जब आप गौर करेंगे आपके अंदर शुक्रगुजारी आएगी कि अल्लाह ताला ने देखें ये कैसा प्यारा रिश्ता बनाया, और ये रिश्ता जब पुरसकून हो जाता है, और ये रिश्ता, इसके अंदर मोहब्बत और रहमत होती है ना, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई और रिश्ता नहीं होता, क्योंकि ये बहुत क्लोज रिश्ता है, इससे ज्यादा करीबी रिश्ता किसी का किसी के साथ नहीं है। माँ बाप का भी औलाद के साथ इस तरह नहीं होता, वो जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक थोड़ा सा एक रहता है, एक पर्दा सा हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल, जब लिबास है ना, लिबास तो आपके जिस्म के साथ चिपका होता है, लिबास कोई आउटसाइड चीज नहीं है, तो लिबास बन जाता है जब ये रिश्ता, तो कितना करीबी रिश्ता है। तो इसकी अगर खूबसूरती चाहते हैं तो इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, तब आप इसकी खूबसूरती इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।